सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं लोयालोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिणं वीरं णमिऊणखेत्तसुत्तं जहो वै संपयासेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है भूतबले और पुष्पदंत आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी और जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। चौथी पुस्तक क्षेत्रानुगम में 79 पृष्ठ पर आए हम। 79। अब यहाँ गति मार्गणा की बात चल रही है और उसमें देवगति का वर्णन चल रहा है। उसमें से बहुनवासियों की बात कल हमने की थी। अब ये 18 नंबर की जो गाथा है 79 पृष्ठ पर, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। पणुवी समसुराणम शेष कुमाराण दस धनु चेय वेन्तर ज्योतिषियाणम दस सत्त धनु मुणे औवा। उनकी हाइट कितनी, उसकी बात चल रही है इसमें। भवनवासियों के दस भेदों में से प्रथम भेद असुर कुमारों के शरीर की ऊंचाई 25 धनुष और शेष नौ कुमारों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है। कुमार उनका नाम है, कुमार यानी छोटे होते हो गए बालक, ऐसा नहीं है। असुर कुमार ये भवनवासी जाति के, देवों में हमने देखा था वहाँ बालक वगैरह कोई नहीं होते, बस एकदम अंतर्मूर्त में युवा ही हो जाते। तो यहाँ कहते हैं अन्य जो नौ प्रकार के जो देव है उनकी शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है तथा व्यंतर देवों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष और ज्योतिष देवों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष जानना चाहिए। इस पूर्वोक्त उच्छेद से यहाँ अवगाहना क्षेत्र ले आना चाहिए। हर एक का उच्छेद यानी हाइट अलग अलग है, तो हर एक के अवगाहना क्षेत्र जो है वो अलग अलग होगा। सौधर्म और ईशान कल्प में स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रेक समुद्घात को प्राप्त हुए मिथ्यादृष्टि देव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात वे भाग क्षेत्र में और मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। वो कितने क्षेत्र में रहते मालूम है? सौधर्म ईशान, सौधर्म ईशान कितने राज्यों में रहेंगे पता है? नहीं पता? हाँ देखो देखो, उसमें देखो मध्य लोक से कितना है, 1.5 राज्य है ना, कितना है? पहले स्वर्ग के 31 पटल है और कितने हैं उसमें राजू? 1.5 राजू है। हाँ अरविंद भाई, अभी नहीं देखा? हाँ 1.5 राजू है ना, हम तो बिना देखे बता रहे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए वो मध्य लोक से तिर्यक लोक से भी असंख्यात गुणा का है। देखो यहाँ लिखा है ना, मानुष क्षेत्र से, मध्य लोक से नहीं, मानुष क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर सर्व पदगत मानुष क्षेत्र से क्या है, मानुष क्षेत्र से पूरा मध्य लोक तो तिर्यक लोक तो ऐसा बहुत है ना, 1 राजू 7 राजू और वो है। हाँ वैसे वहां से 1.5 राजू हाइट पर यानी उनकी जो हाइट शुरू हो जाती ऊर्ध्वलोक की, जो ऊर्ध्वलोक की जो समझना, तो उसमें से 1.5 राजू तक उनके विमान पाए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो चुलिका के बेस से या नीचे से भी ले गए हम यहाँ पृथ्वी पर से, तो विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला, राजू और कहाँ और ये 1 लाख है, हाँ हाँ बहुत कम है। यहाँ पर सर्व पदगत क्षेत्रों की परीक्षा भवनवासियों के क्षेत्र के समान करना चाहिए। भवनवासियों में जो सर्व पदगत है ना, स्वस्थान स्वस्थान विहार, इसको पदगत कहते हैं, पद और या पदगत, कहीं कहीं उसके लिए अर्थपद ऐसा भी शब्द आया था। यानी इतनी अलग अलग जो 10 अपेक्षाएं हमने देखी थी, उसमें जो कोई विशिष्ट अपेक्षा वहाँ लागू होती है, अब देवों में वो आहारक तेजस केवल संबंधात नहीं लगेगा, तो उसको छोड़ देंगे, अन्य जो जहाँ पॉसिबल है वो वहाँ लगेगा। तो यहाँ भवनवासियों के समान ही इनका भी निकालना चाहिए, बात बता रहे। देव अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण विक्रिया करते हैं, इस प्रकार जो अन्य आचार्यों का वचन है वह घटित नहीं होता, क्योंकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो बड़ा है ना, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक के संख्यात विभाग प्रमाण वैकृत समुद्घातगत क्षेत्र के मानने का प्रसंग आ जाता है। यानी यदि हम ऐसा मानेंगे जितना अवधि ज्ञान से जानते हैं वहां तक वो गमन कर सकते हैं, यदि ऐसा मानेंगे तो वो कितना जानते हैं, तो लोक का संख्यात्वा भाग इतना जानते हैं, तो वैकृत समुदाय भी इतने तक करते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, परंतु ऐसा है नहीं। सौधर्म और ईशान कल्प में देव मिथ्या दृष्टियों के मारणांतिक समुद्घात और उपपाद संबंधी क्षेत्र देव सामान्य के मारणांतिक समुद्घात और उपपाद गत के समान जानना चाहिए। पहले हमने देव सामान्य ने इन जनरल बात की थी, वैसे इनको भी जानना। उपपाद क्षेत्र के स्थापित करते समय सौधर्म ऐशान देव मिथ्या दृष्टियों की विष्कम्भ सूची से गुणित जगत श्रेणी को स्थापित करके, हमने पहले संख्या प्ररूपणा जब देखी थी तीसरी पुस्तक में, तो सौधर्म ऐशान संबंधी मिथ्या दृष्टियों की राशि निकालते समय विशिष्ट जो उसके लिए विष्कम्भ सूची, जगत श्रेणी को कौन सी विष्कम्भ सूची से गुणित करना है, तो संख्या आती है उसको कहना यहाँ विष्कम्भ सूची। ये शरीर क्या विष्कम्भ की बात नहीं है, विष्कम्भ सूची यानी संख्या निकालने के लिए जो हम जगत श्रेणी को जिस संख्या से भाग सॉरी गुणा करते थे, आपको याद होगा ना, हमने विष्कम्भ सूची आवार काल वगैरह निकाल देते, वो वाली विष्कम्भ सूची। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, सौधर्म ऐशान देव मिथ्या दृष्टियों की विष्कम्भ सूची से गुणित जगत श्रेणी उसको स्थापित करके, यानी उनकी कितनी संख्या है, सौधर्म ऐशान की राशि कितनी है, टोटल जीव कितने हैं, तो जगत श्रेणी मल्टीप्लाइड बाय उसकी विष्कम्भ सूची, बराबर। अब उस राशि को स्थापित करके पल्योपम के असंख्यात भाग रूप सौधर्म और ऐशान संबंधी उपक्रमण काल से अपवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण होता है। यानी इन टोटल जीवों की संख्या डिवाइडेड बाय पल्योपम का असंख्यात भाग, तो उसमें उसको अपवर्तन सॉरी उपक्रमण काल, उपक्रमण यानी निरंतर उत्पन्न होने का काल, उससे डिवाइड करना, तो उपपाद राशि वहां आ जाएगी। देवों में पहले बताए थे ना, अलग अलग स्वर्गों में अलग अलग हाइट है। अभी भवनवासियों की तो हमने देखी थी वो, हाँ, और वहां की भी आई थी पहले, जैसे सरवार सिद्धि में 3 हाथ हमने देखा था, 3 हाथ ही है ना कि डेढ़ हाथ है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम है, अभी नीचे 7 धनुष वगैरह भी हमने देखी थी ना ये, हाँ, व्यंतर और भवनवासियों में, ज्योतिषियों में 7 देखे थे ना। क्या कहते पहले हमने उनकी जो राशि है उसको पल्लेपम के असंख्यात्वे भाग से डिवाइड किया, तो वहां उत्पन्न होने वाले जीवों का प्रमाण आता है। पुनः असंख्यात योजन रूप दूसरे दंड से उत्पन्न होने वाले जीवों को लाना इष्ट है। ये उपपाद की बात चल रही है, इसलिए दूसरे दंड का आकार यहां लेते हैं, तो असंख्यात योजनों को लिया। ऐसा समझकर पल्लोपम के असंख्यातवें भाग प्रमाण एक दूसरा भागहार स्थापित करना चाहिए, यानी इतने दंड वाले यानी या विक्रिया से उत्पन्न, विक्रिया भी नहीं, विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले जीवों को लेना है और उसमें भी दूसरा दंड इतना होना चाहिए, ये बात बता रहे क्योंकि यह उपपादों का प्रमाण निकालते हैं। देखो अभी तक हमने जो समझा है उस पर से अभी हमको पता लग गया मारणांतिक समुद्धात क्या है कि मरण के पहले ही आत्म प्रदेश वहां तक फैले रहते हैं, इस शरीर में भी है और जहां जन्म लेना है वहां तक फैले है, वहां भी शरीर ग्रहण करने का काम तो बाद में चलेगा, अभी कुछ नहीं होगा, प्रदेश ऐसे ही फैले हुए है उसके, जितना मोटा अभी का शरीर है वहां से लेकर वहां तक इतने आत्म प्रदेश फैले है। अब जब मरण होता है तो समझो दो मोड़ या तीन मोड़ से गया है, तो एक दंड यानी पहले मोड़े तक के आत्म प्रदेश उपसंहार होता है, वो संकुचित हो जाते हैं, फिर दूसरे मोड़े से तीसरे मोड़े तक ऐसा, यानी पहले से दूसरे मोड़े, दूसरे से तीसरे मोड़े, इस तरह से। तो उपपाद के समय में एक समय वाला है उपपाद वाला क्षेत्र, तो उस समय उसका ये दूसरा दंड है या और आगे के दंड है, तो उसकी अपेक्षा उसका क्षेत्र निकालते हैं। तो इसलिए पल्ले के असंख्यातवें भाग से दो बार क्यों भाग दिया, तो पहली बार दिया तो उपपाद से कितने जन्म, उसमें उपपाद वाले जीव कितने हैं, ये संख्या निकाली। दोबारा करने का कारण है वो तो विग्रह करके उत्पन्न होने वाले जीव कितने हैं, नहीं नहीं पहले में तो पूरे उपपाद वाले, दूसरे में वो दूसरा दंड वाला उसकी अपेक्षा से वो ज्यादा हो गए और सीधा गमन करने वाले कम हो गए, फिर उसकी बात बाद में करेंगे। इसलिए दो बार लिया पल्ले का असंख्यातवें भाग से भाग दिया, तो दूसरा भागार स्थापित करना चाहिए। तथा एक प्रतरांगुल प्रमाण विष्कम्भ से और जगत श्रेणी के संख्यातवें भाग प्रमाण आयाम से क्षेत्र को स्पर्श करते हैं, उसका विष्कम्भ एक प्रतरांगुल और जगत श्रेणी का जो संख्यात्वा भाग प्रमाण आयाम, संख्यात्वा भाग प्रमाण आयाम क्यों लिया, अभी जो हमने 31वां पटल है ऐसे ही लेना ना, सात राजू का वो संख्यात्वा भाग है, डेढ़ राजू का, अब देखते आगे कुछ लिखा है क्या। इसलिए प्रतरांगुल गुणित जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग प्रमाण गुणकार स्थापित करना चाहिए, उनका क्षेत्र निकालने के लिए ये उसका गुणकार होगा। एक जीव की अवगाहना इतनी, तो इतने वो राशि तो हमको पहले पता है, और फिर कितना लंबा वो फैला है उपपाद में, दूसरा द्वितीय दंड जो है मारणांतिक का जो द्वितीय दंड है वो उपपाद में आता है, पहले दंड को तो हमने निकाल दिया, मरण हुआ तो पहला दंड संकोच हो गया, तो उपपाद के समय द्वितीय दंड की अपेक्षा यह मुख्यता है। तो जितने लंबा चौड़ा फैला है वो कितना लंबा चौड़ा फैला है, तो जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग, इसलिए उससे गुणा करना है। सर्वत्र रुजुगति से उत्पन्न होने वाले जीवों की अपेक्षा विग्रह गति से उत्पन्न होने वाले जीव असंख्यात गुणे होते हैं। ये जो हमने पल्ले का असंख्यात्वा भाग से भाग देते हैं और फिर असंख्यात बहुभाग वहां उसमें ले लेना विग्रह गति से, और सीधे जाने वाले उसका असंख्यात्वा भाग लेना, क्योंकि श्रेणी की अपेक्षा उच्च श्रेणियां बहुत पाई जाती है। श्रेणी यानी सीधा सीधा गमन, और उच्च श्रेणी यानी अभी उनको तो ऐसा झिकझाक मोड़ वाले जाना पड़ता है ना, श्रेणियां बदलनी पड़ेगी उनको, पहले सीधे में गमन किया फिर वो पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहीं जाएगा, फिर और वो उसकी जहां जन्म लेना है वहां तक जाने के लिए उसके जो अलग अलग मोड़ लेके जाना पड़ता है, तो जो सीधी नहीं है उसको उच्च श्रेणियां कहेंगे, वो अधिक है। हमेशा रुजुगति वाले जाने वाले कम होंगे, उससे असंख्यात गुणा विग्रह गति से जाने वाले होंगे, मारणांतिक समुदात करने की बात चल रही है। सभी के सभी मारणांतिक नहीं समुदात करते, जो करते हैं उनमें से असंख्यात बहुभाग विग्रह गति वाले हैं यानी मोड़ वाले हैं, और असंख्यात वा भाग रुजुगति वाले। शंका, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों का उपपाद क्षेत्र भवनवासी देवों का उपपाद क्षेत्र के समान तिर्यक लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्यों नहीं होता, ऐसा प्रश्न है। नहीं, क्योंकि सौधर्म ईशान कल्प के 31वें प्रभा पटल में उत्पन्न होने वाले सभी तिर्यंचों के दूसरे दंड का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग प्रमाण पाया जाता है। भवनवासी कहाँ रहते हैं? पहली पृथ्वी जो है उसकी मोटाई 180,000 योजन है, उसमें तीन भाग पड़ते हैं, खरा भाग, पंक भाग और अब बहुल भाग। उसमें से ऊपर के दो में वो असुर कुमार होते और बाकी नौ उसमें वो रहते। यानी यहाँ मरने वाले मनुष्य और तिर्यंचों को कितना आना पड़ेगा नीचे? थोड़ा ही आना पड़ेगा, योजनों में संख्यात योजन आना पड़ता है। अब ऊपर की बात करेंगे, सौधर्म उपपाद की बात है ना, यानी वहाँ जन्मने वाले की बात है, वहाँ मरकर जाने वालों की बात नहीं है। और ऊपर सौधर्म ईशान स्वर्ग में कोई जन्मा तो पहले स्वर्ग, पहले दूसरे स्वर्ग के 31 पटल है, तो 31 पटल तक की हाइट कितनी है? तो डेढ़ राजू है। अभी मैंने पूछा था ना आपको, टॉप की, जैसे हमने नरक में पाथड़े देखे थे, पटल देखे थे, वैसे स्वर्गों में भी हर एक स्वर्ग के अपने अपने पटल है, अपने अपने लेयर उससे विमानों के। तो नीचे पहला और ऊपर 31वां, तो 31 पटल वो वहां तक तो हम पहला दूसरा स्वर्ग ही कहेंगे। पहले दूसरे साइड बाय साइड है ना, दक्षिण उत्तर। दक्षिण में कौन सा है मालूम है? सौधर्म। और उत्तर में हाँ दक्षिणेंद्र, दक्षिणेंद्र सब मोक्षगामी जीव अगले भव में एक भव अवतरी है। दक्षिणेंद्र, दक्षिण के इंद्र, अभी सौधर्म जो इंद्र है वो अगले भव में मोक्ष जाने वाला है। और दक्षिण के, दक्षिण वालों के पास ज्यादा विमान है। कैसे? देखो ये सेंटर वाला है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऐसे विमान है, तो ये श्रेणीबद्ध की बात है। तो इसको और इसको भी दक्षिण में इंक्लूड करना, ये सबको, और इनको छोड़कर बाकी यहाँ से जो कुछ है बीच वाले वो सब उत्तर वाले के पास है। तो उत्तर वाले के पास कम है, दक्षिण वाले के पास ज्यादा विमान है। हाँ, तो सौधर्म और ईशान में इसके पास 32 लाख विमान का स्वामी है, और ईशान जो है ईशान वो 28 लाख विमानों का स्वामी है। तो यहाँ अपनी बात चल रही थी, दोनों एक लेवल पर है, एक 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 पटल में असंख्यात ऐसे वो बिल, बिल नहीं वो विमान, उसकी भी कितने श्रेणीबद्ध कितने हैं उसकी संख्या आती है, और एट रैंडम बीच में उसको कहते हैं प्रकीर्णक, तो उनकी संख्या भी निश्चित है, एक एक दिशा में कितने हैं क्या है वो बात आएगी आगे। तो यहाँ डेढ़ राजू तक कहीं भी जन्मते हैं, तो डेढ़ राजू सात राजू का कितवा भाग है? संख्यात्वा भाग है, यानी संख्यात्वा जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग है। सात राजू का यानी जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग है। और भवनवासियों के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ता है? कुछ योजन मान लेते हजारों योजन, परंतु संख्यात योजन है ना। हाँ, यही बात यहां बताना चाहते हैं। तो दूसरा दंड का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात्वे भाग प्रमाण पाया जाता है, इसलिए सौधर्म और ईशान कल्प के देवों का उपपाद क्षेत्र तिर्यक लोक से असंख्यात गुणा होता है। यह सिद्ध हुआ सौधर्म और ईशान कल्प के देवों के शेष गुण स्थानों के, ये मिथ्या दृष्टियों की बात की थी, अब शेष गुण स्थान जो है उसका स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र का कथन देव सामान्य के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र के समान जानना चाहिए। किसमें? हाँ, तिर्यक लोक सात राजू गुणा एक राजू गुणा एक लाख योजन, एक लाख योजन। हाँ, अभी जगत प्रतर में करेंगे उसको, तो जगत प्रतर गुणा लाख का सातवां भाग। हाँ, ये तिर्यक लोक का डायमेंशन हुआ। हाँ, अब यहाँ क्या आपका प्रश्न है?
ये तो खाली
तो एक तिर्यक लोक होगा। अभी उपपाद का क्षेत्र जब निकालते हैं तो एक जीव के लिए उस जीव की अवगाहना जो मरकर गया है, अभी मरकर जाने वाले की नहीं है उपपाद, विग्रहगति में वही अवगाहना रहेगी, परंतु वो जो फैला है वो एक जीव की अपेक्षा इतना क्षेत्र हुआ, तो कितने जीव जाएंगे उसकी अपेक्षा से ये असंख्यात गुणा हो जाएगा। पूरा टोटल क्षेत्र निकालना है। नीचे से चौथी लाइन, सौधर्म और ईशान कल्प के देवों के शेष गुणों गुणस्थानों के स्वस्थान स्वस्थान का क्षेत्र का कथन देव सामान्य के स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्र के समान जानना चाहिए। सनत कुमार कल्प से लेकर उपरिम उपरिम ग्रहवेग तक मिथ्यादृष्टि देवों का स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्र ओघ सासादन सम्यक दृष्टि के स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्र के समान है, तथा उन्हीं के सासादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों के स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्र ओघ सासादन सम्यक दृष्टि आदि के स्वस्थान स्वस्थान आदि क्षेत्रों के समान होते हैं। यानी उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, वहाँ वहाँ की अवगाहना से उसको उसको वो गुणा करेंगे राशि को। अब अनुदिश की बात करेंगे, ऊपर 16वां नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। अनुदिशादि जाव सौवट्ट सिद्धि विमान वासीय देवा असंजत सम्माइट्ठी केवड़ी खेतते लोगस्य असंख्य यदि भागे। वहाँ एकमात्र गुणस्थान है कौन सा, चौथा ही है। कहाँ से कहाँ तक, आगे कौन है, अनुदिश। हाँ सभी ऊपर के सभी, यानी वो अनुदिश अनुदिशादि आदि, यानी नौ अनुदिश है एक पटल पर है। ग्रहवेग एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, परंतु नौ के नौ अनुदिश एक लेवल पर है, एक सेंटर में पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर एक एक और बीच वाली विदिशाओं में एक एक, इस तरह से नौ एक लेवल पर है। तो अनुदिश और अनुत्तर पांच है, तो दोनों में यहाँ तो मात्र सम्य दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं, एकमात्र चौथाई गुणस्थान है, वहां से गिरकर कोई नीचे आवे वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन कौन सी सम्यक्ति होगी वहां, तीनों आएंगे, कैसे कैसे आएंगे बोलो। हाँ द्वितीय ऑप्शन में मरकर जो वहां जाएंगे वो अपर्याप्त अवस्था में द्वितीय ऑप्शन है, फिर वो क्षयोपशमिक हो जाएंगे। और फिर क्षायिक वाले तो जाते ही है, और डायरेक्ट क्षयोपशम के साथ जाने वाले भी होंगे, ऐसे तीनों ही उपाय जाते हैं। देखो अर्थ करते 16वें सूत्र का, नौ अनुदिशों से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक के असंयत सम्य दृष्टि देव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात वैक्रिक समुद्घात मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए उक्त असंयत सम्यक दृष्टि देव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा यहाँ कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ सिद्धि में स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात इन स्थानों में देव मानुष क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि जो है विमान वो कितना बड़ा है, 45 लाख योजन, और मानुष क्षेत्र कितना है, उतना ही, तो वहां के देव उससे संख्यात क्षेत्र में रहेंगे है? अभी हमारा घर कितना बड़ा है, कितना स्क्वायर फुट बाय स्क्वायर फुट, और उसमें आदमी कितने रहते हैं, तो हमारा हमारी अवगाहना देखेंगे और घर की अवगाहना देखेंगे, तो हम घर के संख्यात भाग में रहते हैं ना, वैसे वहां सर्वार्थ सिद्धि विमान 45 लाख योजन है, उसके संख्यात भाग में भी पाए जाएंगे, स्वस्थान स्वस्थान का क्षेत्र उसके संख्यात भाग, इसलिए मानुष क्षेत्र से संख्यात भाग कहा। सेंटर वाला सर्वार सिद्धि है, वो अनुत्तर का सेंटर वाला है। वो एक अकेला 45 लाख योजन है, सर्वार सिद्धि अकेला विमान 45 लाख योजन।
त्रस नाली में पंचेंद्रिय जीव रहते हैं, पंचेंद्रिय सौधनी पंचेंद्रिय त्रस नाली में, तो उनको बाजू में रहने में क्या तकरार है?
हाँ, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर बाजू में चार, सेंटर का खाली अकेला 45 लाख योजन का है, और बाकी के विमान उनकी अपने अपने डायमेंशन अलग है। सबको मिलाकर 45 लाख योजन नहीं कहा, अकेले सरवार सिद्धि का जो सेंटर में विमान है
ये अढ़ाई लाख का 45 लाख योजन के जो अढ़ाई द्वीप की जो कंडीशन है वो मनुष्यों के लिए है, देवों के लिए नहीं, नारकियों के लिए नहीं, तीरेंचे के लिए तो नहीं।
त्रस नाली तो एक राजू भाई, एक राजू गुना एक राजू है। त्रस नाली में यहाँ हमारे असंख्या द्वीप समुद्र है, और वहाँ तो अकेले सर्वार सिद्धि विमान की बात चल रही है।
देखो मैं और एक दूसरी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बताएं कि वहाँ के ऊपर जो सर्वार सिद्धि के जीव है या जो सम्यक दृष्टि है उनके भी वेदना समुद्घात होता है, यानी उनकी भी ऐसी वेदना होती है कि जिसके कारण उनके ख्याल में कषाय समुद्घात होता है। इसका अर्थ क्या हो गया? तुम इतने दिन स्वाध्याय करते हो और कषाय करते हो, अभी वो तो सम्यक दृष्टि है, बोलो अभी क्या है? समझ में आया? ये ज्ञान मिलने से अपने को ये ढाल नहीं है कि अपने को कषाय करने के लिए परमिशन की बात नहीं है, लेकिन ये अज्ञानता के कारण लोग कुछ भी आरोप करते हैं तो हम ढीले नहीं पड़ना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। ख्याल में है? देखो यहां पर लिखा है ना, ये स्वस्थान आदि जो हमने देखा, कितना कितना देखा, देखो स्वस्थान विहार संस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात। अभी समुद्घात कब करेगा? जब कषाय होंगे जब तो करेंगे, और वो भी कैसे कषाय? अनटॉलरेबल।
वहां उनके योग्य जो चौथा गुणस्थान है और शुक्ल लेशा है, उनके यथा योग्य जो कुछ कषाय होते होंगे वहां वो समुद्घात भी हो सकता है, उसकी बात यहाँ। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इतनी विशेषता है कि सर्वार सिद्धि में स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात इन स्थानों में देव मानुष क्षेत्र के संख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि सर्वार सिद्धि में वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घातगत देवों के उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाला स्तोक उत्स्फूर्जन होता है, यानी वो जो प्रदेशों का बाहर निकसना है वो बहुत अल्प होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे हम तीन गुना तीन नौ गुना, हाँ नौ गुना तीन गुना तीन गुना यानी तिगुना बढ़ता है उसका। तो सर्वार सिद्धि में वेदना समुदाय और कषाय समुदाय देवों के उनके निमित्त से होने वाला उत्पन्न होने वाला स्तोक उत्स्फूर्जन होता है, अर्थात उक्त दोनों समुदायों में आत्म प्रदेशों का बाह्य विस्तार बहुत कम होता है, थोड़े से प्रदेश निकलेंगे बस, बहुत कम। इस अपेक्षा उक्त प्रकार का उपदेश दिया, परंतु वहां भी पाया जाता है तो वो कथन तो आएगा उसमें, भले एक प्रदेश भी बाहर निकले तो भी वो केवल ज्ञानी के ज्ञान में आता है। हमने पहले देखा था एक प्रदेश से लेकर तीन गुणे तक साइड वेज और फिर यहाँ तीन गुणे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीन गुना तीन नौ गुणे ऐसा हम कहते हैं। अथवा कारण में कार्य के उपचार से उक्त प्रकार का उपदेश दिया है, इस प्रकार गति मार्गणा समाप्त हुई। अब यहाँ से इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे, पहले सूत्र पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वेदना के काल में आत्म प्रदेशों का बाहर निकसना उसके गुणस्थान से कोई ऐसी बात नहीं, उसमें कोई उसकी मिथ्या भ्रांति है ऐसी कोई बात नहीं है, मिथ्या भ्रांति के कारण निकलते ऐसी थोड़ी बात है। वह एकत्वपना के कारण नहीं निकलते, ये जो समुद्घात है वो सहज प्रक्रिया है, वो सोच समझ कर कोई करता है ऐसी बात है नहीं है। मुनियों के भी जहाँ निकलते हैं अभी वहाँ कहाँ एकत्व बुद्धि है उनके, मुनियों के है कि नहीं वेदना समुद्घात? इंद्रियानो वादेन ए इंद्रिया बादरा सुहमा पज्जता अपज्जता केवड़ी खेते सव्वलोगे। क्या कहते हैं? इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एकेंद्रिय जीव, बादर एकेंद्रिय जीव, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव, बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सर्वलोक में रहते। अकेले एकेंद्रिय कहाँ रहते? तो कहेंगे सर्वलोक में। अब कहेंगे बादर एकेंद्रिय कहाँ रहते? सर्वलोक में होते कि सूक्ष्म एकेंद्रिय होते? हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय। से यहाँ क्या लिखा है? बादर एकेंद्रिय सर्वलोक में। ऐसा क्यों लिखा होगा? हाँ भाई देवेंद्र भाई, आप जरा उत्तर देना। सब बादर और सूक्ष्म होते हैं, पांचों एकेंद्रिय बादर और सूक्ष्म होते हैं। तो यहाँ बादर एकेंद्रिय जीव पूरे लोक में रहते, ऐसा क्यों लिखा? लोक के संख्यात्मक भाग में लिखते तो समझ सकते थे ना। वायु का एक हो या कोई भी हो, सबकी अपेक्षा लिखा है। यहाँ डिफ्रेंशिएट किया नहीं, इंद्रियानो मार्गे ना, यानी एक इंद्रिय बादर एक इंद्रिय, इसी बात की नहीं समझ रहे? देखो हम तो उसके मारणांतिक वगैरह करते कि नहीं, बादर एक इंद्रिय जो मारणांतिक समुदात करके कहीं भी उत्पन्न हो सकते, सूक्ष्म भी जाएंगे समझा, तो वहां तक उनके आत्म प्रदेश फैलेंगे कि नहीं? तो पूरे लोक में फैलेंगे। नहीं समझे आप? मानांतिक अपेक्षा वो क्षेत्र बढ़ सकता है, स्वस्थान की अपेक्षा भले आप कुछ वो क्षेत्र जहाँ रहते हैं आठ पृथ्वियों में ऐसा कह, क्योंकि किसी के आधार से रहते हैं तो हम पृथ्वी के आधार से या कहीं भी, मगर बाद में तो जब वो फैलेंगे आत्म प्रदेश मानांतिक उपपाद की अपेक्षा, स्पर्शानुगम क्षेत्रानुगम ही चल रहा है अपना, अभी स्पर्श को हमने शुरुआत ही नहीं किया। हाँ, स्पर्शन में तो वो भूतकाल की पूर्व भव की भी बात आती है, उसकी बात यहाँ नहीं लेनी है। देखो अब हम आगे पढ़ेंगे अगले पृष्ठ पर, 82 पृष्ठ पर आए हम। इस सूत्र में लोक पद के निर्देश से पांचों लोकों का ग्रहण किया है, क्योंकि यानी पूरे लोक में लिखा है ना, यहाँ लोक पद का निर्देश देशामर्शक है। सूत्र में बादर और सूक्ष्म आदि वचन से स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकृत समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद से परिणत हुए जीवों का ग्रहण किया है। कैसे जीव है ये सब? बादर आदि इन समुद्घात रूपों से परिणत हुए जीव, उनको भी बादर ही कहेंगे ना। तब जब मारणांतिक समुद्घात है तो उन जीव को, उस जीव को क्या कहेंगे हमें? बादर एकेंद्रीय कहेंगे। जो बादर ने किया तो बादर एकेंद्रीय कहेंगे। तो उस रूप परिणत जीवों का ग्रहण किया है। किसको लिया? वैकृत समुदात को भी लिया है। कौन सी चल रही है अपने अभी क्राइटेरिया? एकेंद्रियों की, और उनमें भी वैकृत समुदात होता है। हाँ, ये तो वायु कायिकों के अग्नि कायिकों के होते हैं वो विक्रिया, इसलिए एकेंद्रियों को भी लिया उसमें, क्योंकि उक्त छह प्रकार के अवस्थाओं के अतिरिक्त बादर आदि जीव नहीं पाए जाते हैं। अभी इसके अतिरिक्त जो कौन सी चार बातें रही जो हमने इसमें नहीं ली? 10 पद। हाँ, आहारक, तेजस, केवली और विहारवत। क्यों नहीं लिया विहार को? हाँ, स्थावर जीव है उनको विहायोगति वाला वो नाम कर्म का उदय ही नहीं है, तो एकेंद्रियों में वो विहारवत स्वस्थान को लेना ही नहीं। बराबर? नहीं समझे? हाँ, इन रूप से परिणत जीव ऐसा लिया ना, तो सभी अभी सभी पदों की अपेक्षा से बात किए। अब अलग अलग बात करेंगे तब समझेंगे। देखो आपका प्रश्न है मारणांतिक समुदात करने के पहले क्या नहीं खत्म होता? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मारणांतिक समुदाय कब करता है? जब आयु में अभी कुछ समय बाकी है, अभी जो कुछ आवलिका संख्यात अभाग जो है उतना बाकी है, क्योंकि हमने देखा ना मारणांतिक समुद्घात का काल आवलिका संख्यात अभाग है, तो उतना काल बाकी है, तभी से उसने क्या किया, वहाँ गया वो प्रदेश, वहीं पर भी स्थित है, इस शरीर में भी है, और फिर इस शरीर को छोड़ा। जैसे कोई बंदर एक डाली से दूसरे डाली पर कूद के भी जा सकता है, या कैसे, एक तो उसने हाथ पकड़ा हाँ, और बाद में इधर का पैर या हाथ छोड़ दिया, वो कैसा होगा? हाँ वैसे तो मारना नहीं, यानी वो फैले हुए रहता है, यानी वहां तक अभी शरीर ग्रहण नहीं किया, मगर उस स्थान तक जाके पहुंच गया है वो, कुछ आत्म प्रदेश वहां तक पहुंच गए हैं, और यहाँ भी मूल शरीर में भी है। अब उसने मूल शरीर छोड़ा तो मरण हो गया, और उपपाद में वो अभी छोड़ा हुआ है, मगर वो पूरा, जैसे वो स्ट्रेच किया हमने इलास्टिक, वो पूरा इकट्ठा नहीं हुआ है, संकोच पूरा नहीं हुआ है, तो पहला दंड तो समाप्त होगा मरण के साथ, वो पहला दंड भी उसका उपसंहार हुआ, दूसरा दंड है या आगे के दंड हो गए तो वे अभी वैसे ही है, तो उसको समेटने में टाइम लगेगा, इसलिए उसकी अपेक्षा से लिए। देखो अभी इसको हम पढ़ेंगे, शंका, यदि अंतर्मूर्त है, परंतु फिर भी यहाँ हमने हिसाब के लिए अवलिका संख्या तो भाग कहा था, इसमें बहुत बार मारणांतिक समुदाय का काल तो है अंतर्मूर्त, हिसाब में हमने बहुत बार अवलिका संख्या तो भाग लिया था उसके लिए, और यहाँ ऐसे भी एक बात पहले आई थी कि अवली से कम को भी कहीं कहीं अंतर्मूर्त कहा है, ये बात हमने पहले भी पढ़ा था कहीं। अभी जो कुछ यथा योग्य काल है उसका, क्योंकि अंतर्मूर्त भी बहुत छोटे छोटे भी है ना, आवली से तो बड़े हैं, क्योंकि हमने अंतर्मूर्त की जो परिभाषा जानी है, मूर्त से कम, एक समय कम, दो समय कम, और आवली से एक समय ज्यादा, उसको अंतर्मूर्त कहा था। परंतु इसी पुस्तक में हमने ये भी पढ़ा था कि आवली के कम काल को भी कहीं कहीं अंतर्मूर्त कहने में आया है। अभी जो कुछ यथायोग्य समय मारणांतिक का हो, मरण के उतने समय पहले वो मारणांतिक समुदात करके उसके आत्म प्रदेश फैलते हैं और उसी पोजीशन में रहते हैं, और मरण के समय में वो वहां से मूल शरीर में से प्रदेशों का संकोच हो जाता है। देखे कि शंकाकार ने पूछा कि यदि ऐसा है तो सर्व सूत्र देशामर्शक ही है, क्या सभी सूत्र देशामर्शक होते हैं? जैसे देशामर्शक ने पार्ट बता दिया, उसमें सब समझ लेना। समाधान, सर्व सूत्र देशामर्शक ही है, यह नियम नहीं है। वो कहते ही मत लगाओ, ऐसा कहते आचार्य, कहते ही मत लगाओ, क्योंकि सूत्रों में दोनों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, यानी कोई देशामर्शक है और कोई तो पूर्ण बात बताने वाले सूत्र होते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो पार्शल कथन किया है उन्होंने, अर्थात कुछ सूत्र देशामर्शक है और कुछ नहीं, इसलिए सभी सूत्र देशामर्शक ही है, यह नियम नहीं कहा जा सकता। अब आगे, स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए एकेंद्रिय जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? तो सर्वलोक में रहते हैं। किसको छोड़ा यहाँ? वैकरिक वाले को, वैकरिक समुद्घात को छोड़ दिया, वैकरिक समुद्घात को छोड़कर बाकी पूरे लोक में, पूरे लोक में, क्योंकि वो सूक्ष्म आदि जो जीव है वो पूरे लोक में रहते हैं, वेदना समुद्घात करेंगे तो वो भी लोक, पूरा लोक व्याप्त होता है। अब वैकरिक समुद्घात को प्राप्त हुए केंद्रीय जीव, अब वैकरिक वालों की बात करते हैं, क्योंकि सभी जीव नहीं वैक्रिय समुद्घात करते, ना अपर्याप्त करते हैं ना ही सूक्ष्म करते, तो सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, किंतु मानुष क्षेत्र के संबंध में नहीं जाना जाता है कि उसके कितने भाग में रहते हैं, क्योंकि वर्तमान काल में इस प्रकार का विशिष्ट उपदेश नहीं पाया जाता है, स्पेसिफिकली उनकी बात कहीं लिखी कहीं नहीं है, आगे इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हैं। विक्रिया को उत्पन्न करने वाली एकेंद्रीय जीवराशि पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। टोटल एकेंद्रीय जो विक्रिया कर सकते हैं वो पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। और एकेंद्रीय जीवराशि कितनी है? टोटल अनंत है। अथवा विक्रियात्मक एकेंद्रीय जीवों के शरीर की अवगाहना उच्छेद घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है। उनकी अवगाहना कितनी है? तो घनांगुल का असंख्यात भाग, एक एक जीव की अवगाहना। कौन से जीव? विक्रिया करने वाले। विक्रिया करने वाले कौन कौन से होते हैं? वो वायु का एक जो पर्याप्त है, बादर वायु का एक पर्याप्त वगैरह, और अग्नि का एक, शंका। यह उच्छेद घनांगुल बताया क्योंकि प्रमाण घनांगुल कोई नहीं समझे, इसलिए उच्छेद घनांगुल में जिसका भाग देने से उच्छेद घनांगुल का असंख्यात भाग लब्ध आता है, उस असंख्यात भाग का प्रतिभाग क्या है, यानी कौन से असंख्यात से उसको भाग देना, ये प्रश्न है। तो कहते हैं पल्लोपम का असंख्यात भाग प्रतिभाग है, अर्थात पल्लोपम के असंख्यात भाग का उच्छेद घनांगुल में भाग देने से उच्छेद घनांगुल का असंख्यात भाग लब्ध आता है, जो विक्रियात्मक एकेंद्रीय जीव के शरीर की अवगाहना है। वायु कायिक है, अग्नि कायिक है, सूक्ष्म नहीं, बादरे। ऊपर विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि भी पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण बतलाई है, और उच्छेद घनांगुल का भागहार भी पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण बतलाया है। दोनों है तो पल्ल का असंख्यात भाग, फिर भी संख्या अलग अलग होगी। इसलिए विक्रिया करने वाले एकेंद्रीय जीव राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार क्या छोटा है या बड़ा है या समान है, यह कुछ नहीं जाना जाता। यानी वो एग्जैक्ट संख्या किसकी बड़ी है वो मालूम नहीं इसके थे। अब यदि अभी उसमें पॉसिबिलिटी बताते हैं, यदि एकेंद्रीय वैक्रियक राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा है यानी बड़ा है, वो भागहार बड़ा यानी संख्या छोटी हो जाएगी, ऐसा लेते हैं तो विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि मानुष क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, ऐसा अभिप्राय निकलता है। उस पर से हम डिराइव कर सकते हैं। अथवा विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार असंख्यात गुणा लेते हैं तो वह राशि मानुष क्षेत्र के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, यह अभिप्राय होता है। वो कितने गुना है? तो मानुष क्षेत्र का संख्यात्वा भाग होगा या असंख्यात्वा भाग होगा। और यदि विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि से उच्छेद घनांगुल का भागहार समान है ऐसा लेते हैं तो वह राशि मानुष क्षेत्र के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है, यह अभिप्राय होता है। परंतु यहाँ पर मानुष क्षेत्र का इतना ही भाग लिया गया है ऐसा कुछ भी निश्चय नहीं है, यानी ऐसा उपदेश ऐसा कोई आचार्य परंपरा से आया हुआ नहीं है, इसलिए मानुष क्षेत्र के संबंध में कुछ भी नहीं जाना जाता है कि विक्रिया करने वाली एकेंद्रीय जीव राशि उसके कितने भाग में रहती है, यह नहीं जाना जाता, यह सिद्ध हुआ, ऐसा कहते हैं, यह सिद्ध हुआ। अब कहते हैं स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए बादर एकेंद्रीय और बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के संख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र में तथा मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। मंदराचल के मूल भाग से लेकर ऊपर शतार और सहस्रार कल्प तक पांच राजु उच्छेद रूप से समचतुरस्र लोकनाली वायु से परिपूर्ण है। क्या कहते हैं? ये त्रस नाली में वो वायु ने अभी बादर एकेंद्रीय जीवों की बात चल रही ना, तो पांच राजु तक वायु से परिपूर्ण है कहते हैं। त्रस नाली शतार सहस्रार कल्प तक, शतार सहस्रार कौन से नंबर का है? 12वां, यानी 5 राजु तक। हाँ, 5 राजु तक। 5वां छठा स्वर्ग कौन से लेवल पर आता है, कहाँ तक आता है, उसकी लेवल कहाँ तक जाती है? हमने देखा ना, पहले दूसरे स्वर्ग 1.5 राजु तक है, 5वां छठा, 5वां छठा 3.5 राजु। क्यों? हमने देखा था ना बीच में, ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजु विर्थ होती है, तो ब्रह्म स्वर्ग कितना, आधे लेवल पर है ना, 7 राजु में से आधे लेवल पर है, 3.5 राजु हो गए। और यहाँ बात किसकी चल रही है? शतार सहस्रार, उसकी लेवल कितनी है? तो 5 राजु। तो वहां तक समचतुरस्र लोकनाली, समचतुरस्र है ने एग्जैक्ट, और रेक्टेंगल होता है ना, चौरस जिसको हम कहते हैं, दोनों बाजू समान है, जिस चौकोन की, सम चतुरस्र चारों ही बाजू समान है, यानी एक राजू बाय एक राजू गुना एक राजू। त्रसनाली कैसी है? एक राजू गुना एक राजू, उसकी बात चल रही है। वायु से परिपूर्ण है, अब उसे जगत प्रतर के प्रमाण रूप करते हैं। यदि 49 प्रतर राजुओं के एक पटल का एक जगत प्रतर प्राप्त होता है, तो 5 राजु प्रमाण 5 प्रतर राजुओं का क्या प्राप्त होगा? हमने देखा था ना कैसा निकाले, प्रतर यानी राजु गुणा राजु करके प्रतर राजु होता है। हमने देखा कि नीचे से 5 राजु तक, ये जो एक राजु बाय एक राजु जो क्षेत्र है, वहां तक ये वायु, वायु का एक की बात है, वायु है, हाँ वायु है। तो कहते 5 राजु गुणा एक राजु, 5 स्क्वेयर राजु हो गए, प्रतर राजु हो गए। तो कहते हैं 49 प्रतर राजु का एक जगत प्रतर कहते हैं हम। प्रतर राजू है ने 7 राजु गुणा 7 राजु, तो 49 प्रतर राजू है ने स्क्वेयर राजू हो गए, जैसे हम स्क्वेयर फीट कहते हैं। तो 49 प्रतर राजुओं का एक जगत प्रतर कहते हैं हम, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, यानी 7 राजु गुणा 7 राजु। 49 प्रतर राजु कहो या एक जगत प्रतर कहो, एक ही बात है। हाँ, तो 5 प्रतर राजु उसमें कितने जगत प्रतर हो गए, हमको जगत प्रतर में संख्या निकालनी। हाँ, तो 5 डिवाइडेड बाय 49, और उसकी तीसरी डायमेंशन, क्योंकि हमको घनफल निकालना है, 5 राजु गुणा एक राजु गुणा एक राजु, बराबर। तो हमने 5 राजु गुणा एक राजु किया, पहले प्रतर रूप निकाला, तो वो कितना हुआ, 5 डिवाइडेड बाय 49, इतने आए हमको जगत प्रतर आए, जगत प्रतर में हमने उसको कन्वर्ट किया। अब इस जगत प्रतर को अभी एक राजु से गुणा करना है, तो एक राजु जगत श्रेणी के भाषा में कहना है तो कितना है, क्योंकि अगर हम जगत प्रतर को जगत श्रेणी से गुणा करते हैं, तो जगत यानी घन लोक हमको, जगत घन कहो या घन लोक, उसके भाषा में उत्तर आता है। तो इसको एक राजु का अर्थ कितना है, कितनी जगत श्रेणी कितनी है, 7 जगत श्रेणी, एक राजू इज इक्वल टू कितनी जगत श्रेणियां हैं, 1/7, क्योंकि जगत श्रेणी में 7 राजू है और हमने एक राजू लिया है, यानी जगत श्रेणी का 7वां भाग है ना ये, एक जगत श्रेणी का 7वां भाग है। तो हम इसको जगत श्रेणी जो एक सप्तमांश उसको गुणा करेंगे, तो अपना उत्तर लोक की भाषा में कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाय 343। इतना लोक की भाषा में हमको उत्तर मिला। अब यहाँ क्या लिखते हैं उसको पढ़ेंगे हम। देखो इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, चौथी लाइन में, मंदराचल के मूल भाग से लेकर, मंदराचल यानी मेरु पर्वत, उसके मूल भाग से लेकर ऊपर शतार और सहस्रार कल्प तक पांच राजू उच्छेद रूप से समचतुरस्र लोक नाली वायु से परिपूर्ण है। अब उसे जगत प्रतर के प्रमाण रूप करते हैं। यदि 49 प्रतर राजुओं के एक पटल का एक जगत प्रतर प्राप्त होता है, पटल यानी एक सिंगल लेयर में, तो पांच राजु प्रमाण पांच प्रतर राजुओं का क्या प्राप्त होगा। इस प्रकार त्रैराशिक करके एक जगत प्रमाण फल राशि से पांच प्रतर राजु प्रमाण इच्छा राशि को गुणित करके 49 प्रतर राजु प्रमाण प्रमाण राशि से भाजित करने पर 2/5 = 69 से घनलोक के भाजित करने पर जो एक भाग होता है उतना लब्ध आता है, जो कि पांच घन राजु प्रमाण है। अभी हमने 5/343 लोक की भाषा में निकाला। अगर लोक की भाषा में नहीं निकालते तो हम डायरेक्ट पहले राजू में ही घन राजू कर देते। पांच राजू गुणा एक राजू गुणा एक राजू, पांच घन राजू हो गए। घन राजू को हमको लोक में कन्वर्ट करना है तो 343 डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते। ये लंबा चौड़ा प्रतर करके निकालने की भी जरूरत नहीं थी, क्या कि हमने पहले घनफल निकाला, पांच राजू गुणा एक राजू गुणा एक राजू। अब उसको हमको घन में डिवाइड करना है तो लोक की भाषा में हमको डिवाइड करना है। लोक का कितना भाग है तो 343 से हम उसको भाग देंगे तो 5/343 ये लोक का प्रमाण आया। अब उसको उन्होंने कैसे बताया, देखो अगले पेज पर उन्होंने जो उदाहरण लिखा है, 1 × 5 = 5 आ गए, ये 5 प्रतर राजू हुए बराबर। उसको 49 से डिवाइड करते हैं तो 5/49 ये जगत प्रतर में आया संख्या, 5 था वो प्रतर राजू थे, प्रतर राजू के जगत प्रतर करते समय 49 से उसको भाग दिया था। चूंकि यह वात परिपूर्ण क्षेत्र एक राजू मोटा है अतएव 5 घन राजू हुआ, जो कि 343/68.35। ये उन्होंने पहले ऐसा लंबा लंबा किया, देखो यहाँ पर जो पिछले पेज पर किया था, ये उन्होंने लिखा ना 2/5 = 69 यानी 68.35। हम हमेशा पूर्णांक बताते हैं और ऊपर कितने अधिक है वो बताते हैं, वो आगे वाली पूर्ण संख्या बताते हैं। 69 ये पूर्ण संख्या है और उसमें कितना कम है तो 2/5 कम है, इस तरह से इनकी भाषा है। तो 69 में 2/5 कम है, ये 68 कहाँ से आया है, चार 5 + 33 = 34 भाग देना है ना, उल्टा करके गुणा कर दिया उन्होंने। तो अपना हमने तो जो मेथड की थी वो तो आसान है, 5 घन राजू करो और 343 से भाग दो तो लोक में उसका उत्तर आता है डायरेक्ट, यानी 5/343 घन लोक, ये उसका उत्तर आ गया। आगे लिखा है उन्होंने घनलोक प्रमाण होता है, उदाहरण में लिखा है, ये ख्याल में आया कैसा गणित किया उन्होंने, पूरा जगत प्रतर वगैरह करते 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 आखिर में 343/5। देखो यहाँ क्या किया, क्या किया, एक जगत प्रमाण पहले पेज पर देखा, त्रैराशिक किया वो समझ में आया? त्रैराशिक कैसा किया थे हमने? 49 प्रतर राजू का, एक जगत प्रतर, तो 5 का कितना? 5 डिवाइडेड बाय 49। देखो उसके आगे त्रैराशिक करके एक जगत प्रतर प्रमाण फल राशि से, ये फल राशि एक है, 5 प्रतर राजू प्रमाण इच्छा राशि को गुणित करके 5 × 1। हाँ देखो सुन, 49 प्रतर राजू प्रमाण प्रतर प्रमाण राशि से भाजित करने पर कितना आता है? 2/5 का 69 से घनलोक के भाजित करने पर जो भाग होता है उतना लब्ध आता है। ये पूरा ऐसे ही घनलोक को 68.35 से भाग देने पर जो संख्या आएगी उतना आता है। ऐसा क्या? हाँ 5/3। ये उसका उल्टा उल्टा करके समझाया। हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेविक वहाँ तक, ये सहस रहा था कि वो तो वायु, वायु वहाँ तक है का? वायु से परिपूर्ण है, वायु से परिपूर्ण है का? अब हम आगे देखेंगे। तथा पहले प्ररूपित किए गए लोक के चारों ओर प्रांत भाग में संख्यात योजन बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण वात क्षेत्र को लाकर, ये पहले ही पहले हमने निकाला था, लोक के चहुं ओर जो जगत वात वलय है, नीचे हमने देखा 60,000 योजन है, एक राजू योजन तक, एक राजू तक, फिर बाद में वो 16 योजन है साइड में, सभी साइड में, मध्य लोक के पास 12 योजन हो जाता है, फिर ब्रह्म लोक के पास 16 होता है, फिर ऊपर 12 योजन हो जाता है, और ऊपर के भाग में एक कोष में कुछ कम है, एक योजन में 2 कोष, 1 कोष और 1 में कुछ कम, इस तरह से। ये तो उसका हमने पूरा का घनफल भी निकाला था। तो कहते हैं संख्यात योजन बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण वात क्षेत्र को लाकर, वो हमने पूरी टोटल उसकी निकाली थी, तो संख्यात योजन, संख्यात में वो हजारों का गुणकार था, तो संख्यात योजन मल्टीप्लाइड बाय जगत प्रतर, ये संख्या आई थी वहां, उसको इसी पूर्वोक्त वात क्षेत्र में मिलाकर, अभी जो हमने वात क्षेत्र निकाला उसमें वो पहले वाला सराउंडिंग वाला वात क्षेत्र उसकी टोटल करेंगे, तथा 8 पृथ्वियों के क्षेत्र और उनके नीचे स्थित वायु क्षेत्र, 8 पृथ्वी है ने, ये पहली पृथ्वी तो यहाँ है मध्य लोक जिस पर है वो पहली पृथ्वी, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अधोलोक में, और 8वीं ऊपर ईशत प्रागभार वाली। तो कहते हैं और वायु का, वायु का एक कहाँ कहाँ है उसकी बात चल रही है, 8 पृथ्वियों का क्षेत्र और उनके नीचे स्थित वायु क्षेत्र, ये इसके और पीछे, पहले और दूसरे में, पहले के नीचे भी वायु का क्षेत्र है, ऊपर का तो हमने देखा 5 राजू तक है, पहली पृथ्वी के ऊपर 5 राजू तक तो वायु का क्षेत्र है ही है, अभी 8 पृथ्वियों में भी है और पृथ्वियों के नीचे भी, इन बिटवीन 2 पृथ्वियां, वहां भी असंख्यात योजनों का वो वात का क्षेत्र है, वो वायु यहाँ भी है बीच बीच में सर्वत्र। तो कहते हैं 8 पृथ्वियों के क्षेत्र और उनके नीचे स्थित वायु क्षेत्र जो कि संख्यात योजन बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण है, जगत प्रतर में कन्वर्ट करो तो संख्यात योजन गुणा जगत प्रतर इतना है, उनको उसी पूर्वोक्त क्षेत्र में मिला देने पर, चूंकि लोक के संख्यात विभाग प्रमाण बादर एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों का क्षेत्र होता है, वायु कायिकों की मुख्यता से यहाँ लिया है, तो बादर एकेंद्रिय कहाँ रहते हैं, तो ये पूरा जो अभी हमने देखा, इसलिए बादर एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव लोक के संख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं यह सिद्ध हुआ। वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त हुए बादर एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीवों का क्षेत्र वैक्रियक समुद्घातगत सामान्य एकेंद्रियों के क्षेत्र के समान होता है। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए बादर एकेंद्रिय और बादर एकेंद्रिय पर्याप्त जीव सर्वलोक में रहते हैं, उसकी अपेक्षा से सर्वलोक कहा था पहले। मारणांतिक समुद्घात करके जिस किसी पर्याय में उत्पन्न हो गए, अब यहाँ भले वो पर्याप्त है तो सूक्ष्म में उत्पन्न हो गए, अपर्याप्त हो में उत्पन्न, कहीं भी उत्पन्न होते हैं तो ये पूरा लोक उनका क्षेत्र है मारणांतिक की अपेक्षा। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तों का क्षेत्र बादर एकेंद्रियों के समान होता है। इतनी विशेषता है कि बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तों के वैक्रियक समुद्घात पद नहीं होता है। वैक्रियक समुद्घात कौन करेंगे? पर्याप्त। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव और उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त जीव सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म तो सर्वत्र रहते हैं, हमने पहले देखा था। क्योंकि सूक्ष्म जीवों के सर्वलोक में पाए जाने में कोई विरोध नहीं है। बादर लोकों का तो सर्वलोक में पाया जाना संभव नहीं है, परंतु सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र पाए जाते हैं। तो बादर में जो वायुकायिकों की मुख्यता से जो कथन कर आए हैं उसकी तो बात हो गई अपनी। बादर पृथ्वी का एक तो आठों पृथ्वी ले लेंगे। हाँ, तो सपोर्ट से अभी पृथ्वी के आधार से वो बादर पृथ्वी। अच्छा, आपको कहना बादर वायु का एक किसके आधार से रहते? हाँ, जैसे जल है, नीचे पृथ्वी और जल रहता है ऊपर, तो वो जल जल की पूरी राशि है, तो ऊपर का जल नीचे के जल के अंदर से पांच राजू प्रमाण। पांच राजू तक वो उसी का आधार कहना पड़ेगा अभी। हाँ, बादर वायु का एक की चल रही बात, ये जिसकी मुख्यता है पूरे बादर एकेंद्रियों में वही बात चलेगी। जैसे हम कहते हैं कर्म की अधिक स्थिति कितनी है? 70 कोड़ाकोड़ी। 70 कोड़ाकोड़ी वाला उसमें एक ही है, दर्शन होने वाला मिथ्यात्व। नवी होती नहीं पृथ्वी, आठ ही पृथ्वी है। पृथ्वी तो आठ ही है, ईशत प्रागभार नाम की आठवीं पृथ्वी है ऊपर। अभी हर एक पृथ्वी की मोटाई वगैरह बताएंगे। कलकल नाम का वो उसका बादर स्थावर की वो राशि वहां रहती है, इतना लेना है। सातवें पृथ्वी के नीचे है ना वायु का एक, है ना? नहीं नहीं, वो उसके नीचे की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म तो सर्वत्र रहते हैं, सूक्ष्म तो पूरे लोक में रहते हैं। जहाँ बादर रहते वहाँ भी सूक्ष्म रहते हैं, और बादर अमुक विशिष्ट जगह रहते हैं। सर्वलोक में रहते हैं। देखो नीचे से पांचवी लाइन चल रही है। बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तों का क्षेत्र बादर एकेंद्रियों के समान होता है, ये पढ़ा था ना हमने। हाँ, वो पूरा ही पढ़ा रहता है। अभी 18 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे हम। अब एक इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रियों की बात हो गई, अब दो इंद्रियों की करेंगे। बी इंद्रिय ती इंद्रिय चौर इंद्रिया तस्व पज्जत्ता अपज्जत्ता केवड़ी खेत्ते लोगस्य असंख्य यदि भागे, कि द्विइंद्रिय ती इंद्रिय चतुर इंद्रिय जीव और उन्हीं के पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान। देखो एक इंद्रिय में विहारवत को नहीं लिया था, अब द्विंद्रिय से विहारवत को ले रहे, क्योंकि विहायोगति नाम कर्म का उदय द्विंद्रियों से आगे होता है। विहारवत स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात इन पदों से परिणत हुए उक्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में, ये विकलेंद्रियों को लिया है ना, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ढाई द्वीप से असंख्यात गुणा कैसे हुआ? हाँ, स्वयंभ्रमण वो द्वीप वो जो है ना, और वो समुद्र और उसके प्रभाग में भी कुछ भूमि है। इतनी विशेषता है कि तीनों ही विकलेंद्रियों के अपर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। पहले जो पर्याप्त लिए थे वो तीन लोगों के असंख्यात विभाग क्षेत्र में लिखे थे और तिर्यक लोक के संख्यात विभाग में लिखा था, अपर्याप्तों में चारों लोगों के असंख्यात विभाग में लिखा। मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए तीनों विकलेंद्रिय और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में तथा अढ़ाई द्वीप से भी असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर मारणांतिक क्षेत्र के लाते समय अभी द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय मारणांतिक करके कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, देवों में और नरकों में नहीं जाएंगे, बाकी एकेंद्रियों में तो पूरा लोक खुला है उनके लिए सूक्ष्म में जाने के लिए, फिर भी उनकी संख्या को उनकी अवगाहना से गुणा करते हैं तो वो तो पूरे लोक का असंख्यातवा भाग आता है। तो तीन लोकों के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में तथा अढ़ाई द्वीप से भी असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर मारणांतिक क्षेत्र के लाते समय द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय तथा उनकी पर्याप्त और अपर्याप्त जीव राशि को स्थापित कर, पहले उनकी संख्या कितनी हमें मालूम है, पर्याप्त राशि कितनी और अपर्याप्त राशि कितनी, उसे आवली के असंख्यात वे भाग मात्र उपक्रमण काल से खंडित करके, उपक्रमण काल यानी निरंतर उत्पन्न होने का काल, तो उससे उसको भाग देंगे, उसका जो लब्ध आवे उसके, ये करेक्शन किया है, उसका जो लब्ध आवे उसके असंख्यातवा भाग अथवा संख्यातवा भाग प्रमाण, वो लब्ध आवे उतने ये निकाल देना। संख्यात्वा भाग प्रमाण राशि मारणांतिक समुद्घात के बिना मरण करती है, इसलिए यानी बिना मारणांतिक के वो मरती है। सभी जीव मारणांतिक करता है ऐसे नहीं है, तो इसलिए उतनी राशि उसमें से माइनस कर देंगे। इसलिए इस राशि के असंख्यात बहुभाग अथवा संख्यात बहुभाग प्रमाण राशि को ग्रहण करके उसे मारणांतिक समुद्घात के उपक्रमण काल रूप आवली के असंख्यात भाग से गुणित करने पर मारणांतिक जीव राशि होती है। ये आवली का असंख्यात भाग में जो अभी कह रही थी ना, वो मारणांतिक का उपक्रमण काल बताया उन्होंने। यहाँ एक राजु मात्रा आयाम से स्थित मारणांतिक जीव राशि इच्छित है, इसमें तो मेजोरिटी एक राजु वाली लेनी है, इसलिए उक्त राशि के नीचे भागार के स्थान में पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र भागार को स्थापित करके और अपने अपने विष्कम्भ के वर्ग से गुणित राजु से उक्त राशि के गुणित करने पर मारणांतिक समुद्घात गत विकलत रहे और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवों का मारणांतिक क्षेत्र होता है। यहाँ एक राजु की मुख्यता से लिया है इसलिए उसकी जीवों की अवगाहना और गुणा वो एक राजु, ऐसा उसका क्षेत्र निकाला मारणांतिक का। पहले पूरी जीव राशि जो कितनी द्विंद्रिय की पर्याप्त पर्याप्त, उसको असंख्यात पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दिया, उसमें से बहुभाग मारणांतिक करती इसलिए उसको लिया, उसमें भी एक राजु वाली की मुख्यता लेनी है, तो उसकी अपेक्षा से यहाँ कैलकुलेशन करके बताया। अब ये मारणांतिक बात हुई, अब उपपाद की बात। उपपाद क्षेत्र के लाते समय इसी मारणांतिक जीव राशि को स्थापित करके और उसमें से मारणांतिक उपक्रमण चाहिए, उपक्रमण हुआ है, उपक्रमण काल के गुणकार को निकाल देने पर उपक्रमण म चाहिए। एक समय में संचित हुई मारणांतिक जीवराशि होती है। ये मारणांतिक का क्षेत्र जब निकला था तो उपक्रमण काल जो है निरंतर उत्पत्ति होने का काल, निरंतर उत्पत्ति होगी अन्य पर्याय में, यहाँ यानी उतने काल तक वो ये मारणांतिक वाले भी उसमें संचित होते जाएंगे, तो इसलिए वहाँ अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण उसको वहाँ रखा था। अब उसको जो गुणकार रूप में रखा था एक समय में इतने मारणांतिक, तो अवली के असंख्यातवे भाग समयों में कितने, इसलिए हमने वहाँ गुणकार किया था। वो गुणकार को हटा देंगे तो एक समय की प्राप्त राशि मिलेगी उपपाद का प्रमाण लाने के लिए, क्योंकि उपपाद वाला एक समय का ही होता है। वैसा निकाल लेने पर एक समय में संचित हुई मारणांतिक जीव राशि होती है, यानी एक समय वाली मारणांतिक जीव राशि मिली हमको। अब मारणांतिक करने वाले कोई विग्रह गति से जाएंगे और कोई सीधे से जाएंगे, तो एक समय में संचित हुई इस मारणांतिक जीव राशि के असंख्यात बहुभाग जीव विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं और एक भाग प्रमाण असंख्यात भाग प्रमाण सीधी रुजु गति से जाएंगे। इसलिए उपपाद वालों में ये विग्रह वाले मारणांतिक लेना है। तो जो हमने एक समय वाली मारणांतिक राशि आई उसको ये असंख्यात से फिर भाग देना पड़ेगा, उसमें से बहुभाग लेना, असंख्यात से भाग और एक कम असंख्यात से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए उसके असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करके असंख्यात भाग को लिखा है वहां, असंख्यात बहुभाग को करेक्शन किया ही होगा सबने अपना अपना। असंख्यात बहुभाग को ग्रहण करके पल्लोपम के असंख्यात विभाग से भाजित करने पर जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग आयाम रूप से भाजित करने पर जगत श्रेणी के संख्यात विभाग आयाम रूप से दूसरे दंड में स्थित जीव राशि होती है। ये उपपाद की अपेक्षा दूसरे दंड में स्थित जीव राशि को लेना है। मारणांतिक की राशि निकाली हमने एक समय की, मारणांतिक की पूरी राशि निकालने के लिए अवली के असंख्यात विभाग से गुणा किया था, वो गुणकार निकाल दो तो उपपाद वाले मिलेंगे एक समय वाले। उपपाद वाले जो सभी है वो उसमें से भी विग्रह करके आने वाले हैं मारणांतिक समुदाय और सीधी गति से आने वाले हैं, तो विग्रह करके आने वाले बहुभाग है तो असंख्यात से भाग दो और एक कम असंख्यात से गुणा करो तो असंख्यात वा बहुभाग मिलेगा। तो विग्रह करके आते हैं तो वो उसको उपपाद में लेना उनको, क्योंकि मैक्सिमम क्षेत्र निकालना है ना हमको, इसलिए बड़ा दंड है द्वितीय दंड जो बड़ा है उसकी अपेक्षा से यहाँ बता रहे हैं। अब ये विकलेंद्रियों की बात हो गई, 19वां सूत्र पढ़ेंगे पंचेंद्रियों के बारे में। पंचिंद्रिय पंचिंद्रिय पज्जत्तेषु मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव अजोगी केवलित्ती केवड़ी खेत्ते लोगस्य असंख्येत यदि भागे। अब यहाँ अपनी इंद्रिय मार्गणा चल रही है तो सभी पंचेंद्रिय एक में ले लेंगे। अब यहाँ गति की अपेक्षा डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा से हमने इसमें पंचेंद्रिय जीवों को इकट्ठा किया है, वो सभी पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी असंगी मनुष्य देव नारकी सभी आ गए, तो सब में मिलकर गुणस्थान कितने हो गए, तो 1 से लेकर 14 तक। हाँ, सहयोगी को यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र की बात की है। हाँ, सहयोगी को छोड़कर अकेले वो स्वस्थान वाले सहयोगी ले सकते हैं, परंतु उनकी बात नहीं लेनी यहाँ, क्योंकि एक क्षेत्र बताता है कि उनकी बात नहीं की है। अगर सहयोगी के लेते तो पूरा लोग बताना पड़ता, इसलिए उसकी बात बाद में करेंगे। नीचे अर्थ किया है, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान के जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव, ये मिथ्यादृष्टि जीव लिए पहले इसलिए वो तेज समुद्घात आहार समुद्घात वो नहीं लिया, और यहाँ मारणांतिक और उपपाद को भी छोड़ा है क्योंकि वो क्षेत्र कुछ बढ़ जाएगा, इसलिए सामान्य लोग आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और तिर्यक लोग के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। ये सभी पंचेंद्रियों की बात की, इसलिए ये बात आ गई है। ऊपर के गुण स्थानों में वो मानुष क्षेत्र की अपेक्षा भी बताएंगे उसके संख्यात विभाग में, ख्याल है, जहाँ अकेले मानुषों की बात आ जाएगी, संयतों की वगैरह। मानातिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और मनुष्य लोक तथा तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि मानातिक समुद्घात करके ये पंचेंद्रिय तिर्यंच है मनुष्य है, वो तो एक इंद्रियों में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सूक्ष्म में भी जाएंगे, इसलिए तिर्यक लोक का असंख्यात गुणा कहा। इन क्षेत्रों को पहले के समान ले आना चाहिए। सासादन समय दृष्टि आदि का स्वस्थान स्वस्थान आदि पदगत क्षेत्र, ओह सासादन समय दृष्टि आदि के स्वस्थान स्वस्थान आदि पदगत क्षेत्र के समान जानना चाहिए। पहले हमने ओघ प्ररूपणा देखी थी, गुण स्थानों में क्षेत्र का वर्णन आया था, तो सासादन के लिए जो क्षेत्र बताया वही यहाँ पंचेंद्रियों में सासादन, एक ही बात है ना, क्योंकि सासादन पंचेंद्रियों को ही होता है। इसी प्रकार पर्याप्तों के क्षेत्र का भी कथन करना चाहिए। अब अयोगी के सहयोगी केवली की बात अलग सूत्र में बताइए। इससे ही जाना जाता है कि पूर्व सूत्र में सहयोगी को लिया नहीं था। तो कहते सहयोगी केवली ओगम, और इनका पहले ही वर्णन कर आए हैं। गुण स्थानों में जब 14 गुण स्थानों का क्षेत्र देखा था जीवों का, तब उसमें इनकी बात हमने विस्तार से देखी थी, उनका समुद्घात का प्रपोर्शन वगैरह कैसा निकालना उसको। सहयोगी केवलियों का क्षेत्र सामान्य प्ररूपणा के समान है। इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा पहले कर आए हैं, इसलिए यहाँ पर पुनः उसका कथन नहीं करते हैं। अब आगे अगला सूत्र पढ़ेंगे 21 नंबर का। पंचेंद्रिय अपर्याप्तता केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे, यानी पंचेंद्रिय अपर्याप्त ने यहाँ लब्धि अपर्याप्तकों की बात है। लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों की अवगाहना अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र है। पर्याप्तों की अवगाहना बड़ी है तो उनका क्षेत्र भी बड़ा हो जाता है। ये अपर्याप्त जीव है तो संख्या में ज़्यादा, परंतु उनकी अवगाहना बहुत कम है। और उसको उन्होंने विहारवत भी नहीं लिया, हाँ, और कौन सा नहीं, वैक्रेक भी नहीं लिया, है ना। मारणातिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में तथा मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि मरण करके कहीं भी उत्पन्न हो गए तो उसकी अपेक्षा मनुष्य लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में होते हैं। इस प्रकार इंद्रिय मार्गणा समाप्त हुई। ये तो जल्दी समाप्त हुई है ना? अब काय मार्गणा की बात करेंगे। काय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद है? हाँ, षटकाय, पांच स्थावर और एक त्रस्त। पढ़ेंगे हम सूत्र 22 नंबर का, पहले प्राकृत में ऊपर। कायाणुवादेन पुढ़वी काया आऊ काया तेऊ काया वाऊ काया बादर पुढ़वी काया बादर आऊ काया बादर तेऊ काया बादर वाऊ काया बादर वनस्पति काय पत्ते शरीरा तस्सेव। अभी जितनी लिस्ट पड़ी उसके अपजत्ता, फिर सुहम पुढ़वी काया सुहम आऊ काया सुहम तेऊ काया सुहम वाऊ काया तस्सेव पज्जत्ता अपजत्ताय केवड़ी खेते, तो सव्वल होगे। काय मार्गणा के अनुवाद से पृथ्वी कायिक अपकायिक तेजस कायिक वायु कायिक जीव तथा बादर, ये जब पहले कहे तो इन जनरल कहा, अब बादर और सूक्ष्म अलग अलग बताएंगे, फिर उसके पर्याप्त अपर्याप्त बताएंगे। बादर पृथ्वी का एक, बादर अप का एक, बादर तेजस का एक, बादर वायु का एक और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीव तथा इन्हीं पांच बादर काय संबंधी अपर्याप्त जीव। फिर सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म अप का एक, सूक्ष्म तेजस का एक, सूक्ष्म वायु का एक और इन्हीं सूक्ष्मों के पर्याप्त और अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो सर्वलोक में रहते हैं। सूक्ष्मों में किसको नहीं लिया? हाँ, सूक्ष्म वनस्पति ने निगोद। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, वह इस प्रकार है। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद को प्राप्त हुए पृथ्वी कायिक और सूक्ष्म पृथ्वी कायिक तथा उन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त जीव, अपकायिक और सूक्ष्म अपकायिक तथा उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त जीव, तेजस कायिक और सूक्ष्म तेजस कायिक तथा उन्हीं के पर्याप्त अपर्याप्त जीव, वायु कायिक, जब अकेला कहा तो वो बादर वायु कायिक समझना, वायु कायिक और सूक्ष्म वायु कायिक तथा उन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि उक्त राशियों का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है। ये सूक्ष्म बाकी के जो है बादर और सूक्ष्म और वनस्पति के भी बादर, वो असंख्यात में जाते हैं और वो अगर हम निगोद की बात करेंगे तो अनंत में जाती है। इतनी विशेषता है कि वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुई तेजस कायिक पांचों लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है। विक्रिया करने वाली अग्नि कायिक राशि पांचों लोक, यानी वो मनुष्य लोक को भी लिया उसमें, उसके असंख्यातवे भाग। वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुई वायु कायिक राशि सामान्य लोक आदि चार लोकों के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहती है और वैकृत समुद्घात को प्राप्त हुई वायु कायिक राशि मानुष क्षेत्र की अपेक्षा कितने क्षेत्र में रहती है यह नहीं जाना जाता है, यह पता नहीं है कहते हैं। मनुष्य लोक के साथ कंपैरिजन करके उसका भी उपदेश प्राप्त नहीं है। स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए बादर पृथ्वी कायिक और उन्हीं के अपर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र में, तिर्यक लोक से संख्यात गुणा क्षेत्र में, ये संख्यात गुणा किए इसमें, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त और अपर्याप्त, तिर्यक लोक से संख्यात गुणा, क्योंकि वो तो आठ पृथ्वियों के वह अभी उसमें विस्तार समझेंगे उसमें, और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, चूंकि बादर पृथ्वी का एक जीव और उन्हीं के अपर्याप्त जीव पृथ्वी का आश्रय लेकर ही रहते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का एक तो पूरे लोक में रहेंगे, बादर पृथ्वी का एक पृथ्वी के आधार से रहेंगे, इसलिए पृथ्वियों को जगत प्रतर के प्रमाण से करते हैं, यानी पृथ्वियों की जो मोटाई है उसको जगत प्रतर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारे पाँच इंच है, हम उसको फुट में या फीटों में कन्वर्ट करते हैं, वैसा इसमें जगत प्रतर प्रमाण से करते हैं। उनमें से अभी पहली पृथ्वी कितनी मोटी है वो सब निकालेंगे, एक राजु चौड़ी और सात राजु लंबी और 20,000 योजन कम 2,00,000 योजन मोटी, यानी 1,80,000 योजन मोटी। कल शाम के प्रवचन में बात आई थी ना, 1,80,000 योजन मोटी पहली पृथ्वी है। जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं वो पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी है, हमने क्या मध्य लोक कहा कितना है, एक राजू पूर्व पश्चिम और दक्षिणोत्तर 7 राजू, पृथ्वी इतनी बड़ी है और उसकी मोटाई कितनी है, 1,80,000 योजन पृथ्वी की मोटाई चल रही है अभी। जमीन, यह घनफल की अपेक्षा, ये तीन डायमेंशन जो देखे हमने उसका आपस में गुणा करेंगे तो हमको घनफल मिलेगा। तो घनफल किस में मिलेगा, प्रतर राजु गुणा योजन है ना, और उसको हमको जगत प्रतर में करना है, तो अभी देखेंगे हम। यह घनफल की अपेक्षा अपने बाहल्य के अर्थात 1,80,000 योजन के सातवें भाग बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण है। हमने कितने कितनी संख्या देखी, एक राजू गुणा सात राजू गुणा 180,000 योजन मोटी है। अभी ये कितने है? सात प्रतर राजू आए, सात प्रतर राजू है, और अभी हमको उनको किस में करना है? जगत प्रतर में कन्वर्ट करना है। 49 प्रतर राजू का एक जगत प्रतर होता है, तो इसका कितना होगा? हाँ, तो डिवाइडेड बाय 49, तो 180,000 को सात से डिवाइड करते हैं, इतने योजन बाहल्य वाला जगत प्रतर, यानी जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय दिस 180,000 बाय डिवाइडेड बाय सात। इतने जगत प्रतर हो गए। यही उदाहरण में समझाया उन्होंने। देखो, पहली पृथ्वी उत्तर से दक्षिण तक सात राजू, पूर्व से पश्चिम तक एक राजू, और 180,000 योजन मोटी है, अतएव 180,000 योजनों के प्रमाण में सात का भाग देने से 25,714 पूर्णांक 2 सप्तमांश योजन लब्ध आते हैं, और एक राजू के स्थान में जगत श्रेणी का प्रमाण हो जाता है। यानी वहाँ एक राजू था, उसको सात राजू करने के लिए यहाँ सात का भाग दिया है ना। इस प्रकार 25,714 पूर्णांक 2 सप्तमांश योजनों के जितने प्रदेश हो उतने जगत प्रतर प्रमाण पहली पृथ्वी का घनफल होता है। अब दूसरी पृथ्वी एक राजू के सात भागों में से एक भाग कम दो राजू चौड़ी, ये उल्टा सुल्टा बताते हैं उनको कितना बताना है, दूसरी पृथ्वी कितनी चौड़ी है उसको बताना है। देखो, अभी ऊपर तो एक राजू बाय सात राजू थी, अब नीचे आते हैं, पृथ्वियों की हाइट तो कम होती जाएगी परंतु उसका विस्तार अभी बढ़ेगा। यहाँ एक राजू प्रमाण था, अब यहाँ बढ़ेगा, तो वो कितना होता है दूसरी का? तो 13 सप्तमांश, यानी सात के साथ सातन सात 13, तो यहाँ कैसा लिखा? एक भाग कम दो राजू, यानी सात भागों में से एक भाग कम दो राजू, दो राजू में से एक सप्तमांश कम कर दो, यानी 1.6 सप्तमांश करो, यानी 14 सप्तमांश होते तो दो राजू हो जाते, उसमें से एक भाग कम किया 13 सप्तमांश हो गए, तो 13 सप्तमांश राजू ऐसे उसकी विड्थ, और ऐसा कितना होगा? सात ही रहेगा ना, कितने भी नीचे जाओगे तो सात का सात, दक्षिणोत्तर तो सात ही प्रमाण रहेगा, तो 13 सप्तमांश गुणा सात प्रतर राजू हो गए। और वो मोटी कितनी है? 32,000 योजन मोटी है, पहले 180,000 थी, अब 32,000 पर आ गए प्रमाण। यह घनफल की अपेक्षा 4,16,000 योजनों के 49वें भाग बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण है। कैसा निकाला? 13 सप्तमांश जो है चौड़ाई, और ऐसे दक्षिणोत्तर सात राजू गुणा 32,000 करेंगे, बराबर, ये साथ साथ गए, परंतु ये 13 क्या है? प्रतर राजू है। 13 प्रतर राजू के हमको क्या करना? अभी जगत प्रतर करना है, तो जगत प्रतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 49 से भाग देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 49। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो उदाहरण, देखो उनका, दूसरी पृथ्वी उत्तर से दक्षिण तक सात राजू, पूर्व से पश्चिम तक 13 सप्तमांश राजू, और 32,000 योजन मोटी, तो 13 सप्तमांश गुना 7 एकांश इज इक्वल टू 13 एकांश। ये 13 एकांश क्या हुए? प्रतर राजू हो गए। ये प्रतर राजू हो गया, और फिर 13 एकांश गुना 32,000 वो योजन है, 32,000 योजन, तो 416,000 हो गए। अब इस 416,000 को 49 से भाग देना है, क्योंकि हमको इसको जगत प्रतर प्रमाण करना है, तो उसका उतना योजन बाहल्य रूप जगत प्रतर प्रमाण इसका उत्तर आता है। ये दूसरी पृथ्वी की मोटाई हमने अभी यहाँ देखी। अब तीसरी पृथ्वी वगैरह जो है उसका घनफल कैसे निकालना वो बात हम कल से क्रम से देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते